पाकिस्तान, तो आप उन ममालिक की गवर्नमेंट्स को कांटेक्ट करके ब्रिंग देम इन, ठीक है। वहां पे आपको प्रूव करना होगा कि यस ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, बिकॉज अब पाकिस्तान की ह्यूमन राइट, हिंदुस्तान इज बदतरीन हम कहने को कहते हैं, मगर पाकिस्तान में भी बदतरीन ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, द वे पुलिस ट्रीट्स। मगर पॉलिटिशियन सर, दे मेक मनी इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में जितनी ये जो इस वक्त पोलराइजेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, इज ऑल दिस पोलराइजेशन इज कॉज्ड एंड क्रिएटेड बाय योर जर्नलिस्ट्स।
यस बिल्कुल, और
100% आपके जर्नलिस्ट इसके रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वहां दो धड़े बने हुए।
इसको जस्टिफाई कर सकते हैं जितनी नफरत पैदा कर दी है इस मीडिया ने?
इट्स एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ द जर्नलिस्ट सर। सर थोड़ा तरस खाएं, मगर अगर आप पॉलिटिशियंस को कंपेयर करते हैं ना, मुझे बताएं कितनी इंडस्ट्री आपने, कितनी फैक्ट्रियां लगा ली, ठीक है, मगर जितने पॉलिटिशियंस हैं दे बिकेम हीरोज फ्रॉम जीरो एंड फ्रॉम एवरी पार्टी।
मीडिया के लोगों का भी यही हाल है कि जितने बड़े मीडिया,
मैं पॉलिटिशियन की, मैं जाती तौर पे एक पॉलिटिशियन को पाकिस्तान मियां चनू से जानती हूँ, साहिवाल से साइकिल हुआ करती थी उनकी, उसके बाद उनका भाई बैठ के केसेस डील किया करता होता था, पता नहीं जिंदा है कि चले गए हैं।
जो लोग
है ये सर, मैं बात कर रही हूँ जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था 92-93, बड़ा कमाल का मेंबर पार्लियामेंट था और साइकिल थी उसके पास, हमने वोट भी दिए हुए उसको।
आपने नाम क्या बताया?
यार मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने नाम भूल जाता है। वो थे कहीं शहर की तरफ से थे, साइकिल चलाया करते थे, फिर उनको रिप्रेजेंट उनका भाई किया करते थे।
मालिकाना इतने बड़े बड़े।
अच्छा अब जितना आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितना आपका चीनी का माफिया है, जितना आपका बड़े बड़े लोग हैं, दे आर ऑल रिच पीपल सर, दे आर ऑल रिच पीपल, दे मेड मनी फ्रॉम लोगों का खून चूस के इन्होंने बनाया। ईमानदारी से अगर आप सोचें तो, मतलब इट्स अ फैक्ट सर।
बिल्कुल ऐसे ही है, और आपने भी मजबूत रियासत स्ट्रांग स्टेट की बात की है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की कौन मानता है, पाकिस्तान की यहाँ पे मिलिट्री हुकूमत हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की तो कोई मुल्क नहीं मानता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आफिस सिद्दीकी की। आफिस सिद्दीकी को कितना कोशिश की पाकिस्तान ने वहां से लाने की, ला सके हैं। इसके
अलावा किसी ने भी नहीं कोशिश की। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सेनेटर मुश्ताक उनकी बहन के साथ पहुंचे हैं। नोबडी, बल्कि देर इज अ बुक जिसमें ओबामा ने ये लिखा कि मैं तो चाहता था कि मैं आखिर में उनको पार्डन दिलवा सकता, बट नोबडी फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट आस्क्ड हिम। आई कैन नेक्स्ट प्रोग्राम में आई कैन शो यू द प्रूफ।
चले अब तो कोशिश हुई ना, उस वक्त नहीं हुआ ओबामा के दौर में, लेकिन उसके बाद ट्रंप का दौर आया, पीटीआई की हुकूमत के साथ ट्रंप के बड़े अच्छे ताल्लुकात।
ट्रंप सेड एग्जैक्टली सेम थिंग, ओबामा सेड एग्जैक्टली सेम थिंग,
क्यों नहीं की?
वो पीटीआई, अब आप खाम खा पीटीआई ले बीच में मेरा, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया।
देखिए नहीं, अभी अभी ये बात आपको इतना यहाँ पे इंसाफ करना पड़ेगा, जब सेनेटर मुश्ताक गए हैं तो हुकूमत का इसमें रोल था ना, तो
सर वो कहते हैं नहीं था, वो कहते हैं नहीं था उनकी, सेनेटर मुश्ताक ने अपने तई कोशिश
की। उनकी बहन कह रही है कि है, सेनेटर मुश्ताक कह रहे हैं कि है, और फिर ये कि मैं, चले खैर इस बहस में क्या पढ़ना, मैं कह रहा हूँ नहीं ले सका। आरिफ नकवी है, वो इंग्लैंड में इस वक्त गिरफ्तार है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड उन्होंने किए हुए हैं, और उन्होंने उन्होंने फंड,
अगर वो पाकिस्तान के मुजरम है तो आपकी गवर्नमेंट लेके आए ना उनको पाकिस्तान में, दे सकता।
पाकिस्तान की कौन मानता है? अमेरिका को नहीं दे रहा है इंग्लैंड, इंग्लैंड अमेरिका को नहीं वो हैंड ओवर कर रहा हूँ आरिफ नकवी को, अभी तक नहीं किया, तीन साल हो गए, चार साल हो गए हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जहां ये जरूरी नहीं होता कि हुकूमत मजबूत भी हो तो अपने बंदों को वहां से ले आए। पाकिस्तान की हुकूमत तो बहुत कमजोर है, पाकिस्तान तो मुल्क ही बहुत कमजोर है, हमारी कौन सुनता है? हमें तो कहते हैं कि जी आप भीख, वहां पे तो हमको भीख भी नहीं अब देता, आप कह रही हैं हमारे मुलजमान वो दें, वो कैसे देंगे? कभी भी नहीं। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की हुकूमत ले आई है, कितना कोशिश की, इमरान खान खुद गए वहां, कह रहे उन्होंने कहा मैं केस करूंगा उनपे, कर लिया, ले आए उनको, बताएं आप।
अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम पार्टीज की बात नहीं करते, मुझे ये बताएं क्या स्ट्रेटेजी हो, मुझे गिव मी सम सोल्यूशन कि ये हम पार्टीज की ग्राउंड पे बात करने की बजाय हम पाकिस्तान की ग्राउंड पे, मैं भी सोचूं तो मैं सिर्फ पाकिस्तान, व्हाट इज द सोल्यूशन, यानी बजाय इसके कि महकमा जी नहीं उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, आपको पता है कि तीजा बढ़िया थे क्या, पता नहीं कुजा लड़िया के चढ़िया, यानी अगर तीसरा लड़े ना तो मतलब मामला सारा का सारा खराब हो जाता है. तो हम पॉलिटिशियन को मुझे बताएं व्हाट शुड वी डू कि पाकिस्तान में रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर एवरीबडी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट दे हैव डन रॉन्ग एंड व्हाट दे डू रॉन्ग. व्हाट शुड वी डू.
बहुत अच्छी बात की और अल्लाह करे कि इसका वक्त आ जाए यहाँ पर इस पर अमल भी हो जाए कि सब अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करें. सियासतदान भी, सियासी जमातें भी, GHQ भी, अदलिया भी, मीडिया भी और पार्लियामेंट भी. और वो कहें सब लोग जिस जिसने गैर आइनी काम किया है उसका एतराफ जुर्म करें. बेशक ना सजा दें आप उनको, लेकिन कम अज कम एतराफ जुर्म करें और कौम से माफी मांगे और वादा करें कि आज के बाद हम आइन पे चलेंगे, सिर्फ आइन पे चलेंगे और कोई गैर आइनी हरकत नहीं करेंगे ना गैर कानूनी काम करेंगे. ये एक कौम को वो कौम के साथ कमिटमेंट करें. आइन हमारे पास है, बहुत अच्छा आइन है, उसमें तब्दीलियां करने की जरूरत है. जहां पर वो करें साफ और आजाद इलेक्शंस हों जिसपे सबको सब कबूल करें उसके नतीजे और आगे चले. ये अगर हम पिछले मुड़ मुड़ के लकीर पीटते रहेंगे और माजी का गंद निकाल निकाल के एक दूसरे पे मलते रहेंगे 40-40, 50-50 साल, 30-30 साल पुरानी बातें.
तो सॉल्यूशन, अगर आप एज ए जर्नलिस्ट हैं, आपको बहुत से प्रोग्राम्स पे बुलाया जाता है, व्हाई डोंट यू स्पीक लाउडली कि जस्ट फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड डू नॉट गेट आउट ऑफ दिस ब्लेम पॉलिटिक्स and take the responsibility to do something wrong.
I speak quite loudly, that's why I've been the target. So main to ye baat kar raha hu, lekin baat ye hai ki jinhone ye karna hai wo bhi to samjhe na.
ठीक सर.
अगर उनके दिमाग में ये बात नहीं आती और समझते कि नहीं वही सब कुछ कर सकते हैं और वही.
मुझे वो याद आ रहे हैं उसके लफ्ज अपनी आसमान जहांगीर, वो तो बड़े टफ लफ्ज यूज करती थी उनके लिए. सर ये क्या हो गया पाकिस्तान में, नैब में क्या होने जा रहा है कि जो आपके प्रोसिक्यूटर जनरल थे हैदर साहब, उन्होंने रिजाइन, असगर हैदर साहब ने रिजाइन किया और अब जो आपके डिप्टी चेयरमैन है नैब जाहिर शाह, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया. मतलब क्या कोई नैब में कोई बम चलने लगा.
नहीं, मेरा नहीं ख्याल बम चलने लगा है. एक तो देखें कि नए चेयरमैन आए हैं ना वहां पे, वो फौज से रिटायर्ड हैं तो वो अपनी टीम लेके आएंगे. उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, उनका वे ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग होगा, उसके मुताबिक चलेंगे. और दूसरी मेरा ये खास तौर पे फोकस होता है कि मैं माइक्रो डिटेल्स में ना जाऊं कि किसकी ट्रांसफर्स और किसकी पोस्टिंग्स हो रही हैं. अब बिग पिक्चर को हम देखें, हम डायरेक्शन को देखें कि हमारा जो ट्रैजेक्टरी एज अ कंट्री किधर है और वो हम देखना चाहिए. और फोर पिलर्स ऑफ द स्टेट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. ये पोस्टिंग ट्रांसफर नॉट अ बिग इशू, असल इशू ये है कि ये बदनीयती के साथ किया जा रहा है या अच्छी नीयत के साथ किया जा रहा है, ये असल सवाल है. और इस पे मुझे नहीं पता, अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इसकी वजह क्या है, अगर ये बदनीति से किया गया या अच्छी नीयत से किया गया. तो और अगर ये मुल्क को, अब जैसे ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, अब लोग तो इस बात पे खुश है ना कि डॉलर का कीमत नीचे आ गई है और उससे जाहिर है पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी किसी ना किसी वक्त, ओवरऑल महंगाई में कमी आएगी, ट्रांसपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी, इंपोर्ट्स की कीमत कम हो जाएगी, हम पे कर्जों का बोझ कम हो गया डॉलर के रेट स्टेबल होने से, चीनी की स्मगलिंग रुकने से या चीनी की कीमत जो है वो स्टेबलाइज हो गई है. तो ये लोगों को डायरेक्ट फॉरेन फायदा तो हो रहा है और वो इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन हमें जब लॉन्ग टर्म हम देखेंगे तो हमें एक निजाम बनाना है जिसमें किसी भी वक्त जो है वो डॉलर रुपी रेशियो जो है वो इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो. चीनी या जो वीट है, शुगर या वीट जो भी है, और यूरिया है फर्टिलाइजर, उसका अगर उसकी जो मार्केट में जितनी उसकी सप्लाई एंड डिमांड है वो सही रहे सब चीजों की, ये एक हमें निजाम बनाना पड़ेगा जिसमें जाती फायदा ना हो, कुछ ग्रुप्स का, कुछ माफिया का फायदा ना हो, बल्कि आम आदमी का फायदा हो. और वो एक ऐसी सियासी जमात और सियासी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत बल्कि, जो इन सब चीजों को खलूस के साथ आगे लेके चले, इस मुल्क के अवाम का सोचे, अपने और अपने ग्रुप का और अपने धड़े का और अपने माफिया का ना सोचे. तो मैं समझता हूँ बिग पिक्चर देखनी चाहिए और माइक्रो लेवल पे जो चीजें होती हैं, और जो भी टीम लीडर है या जो हुकूमत में जो हुकूमत को लीड कर रहे हैं लोग, कैबिनेट है फॉर एग्जांपल, मैं मुंतखब कैबिनेट की बात करूं, ये तो केयरटेकर कैबिनेट है ना, तो उनको मेरे ख्याल में उनको फ्री हैंड होना चाहिए कि अगर वो अपनी मर्जी की टीम लाना चाह रहे हैं और वो अपनी मर्जी का उनका मंशूर में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, उनके जो मैनिफेस्टो होता है कि हमने ये कहा, हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, हमने इंडिया के साथ अब पीसफुल रहना है, हमने अफगानिस्तान के साथ पीसफुल रहना है फॉर एग्जांपल, और ये उनके मैनिफेस्टो में है और इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो दे शुड बी गिवन अ फ्री हैंड। और उसके नतीजे 5 साल में पता चल जाएंगे, वो लोगों को पता चलेगा कि उनकी बेहतरी हुई है जिंदगी या खराब हुई है, और फिर वो फैसला करें 5 साल बाद। तो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब हम आईन पे चले और 5 साल पूरे करें हुकूमत, अपनी मर्जी के काम करें अपनी मर्जी की टीम के साथ, और फिर उसका एहतसाब हो। ये नहीं है कि हर साल डेढ़ साल उसके आने के बाद उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएं, जो भी हुकूमत आए और उसकी टांग खींचना शुरू हो जाए, उसको कोई काम ना करने दिया जाए, उनको फोकस ना करने दिया जाए, उनको अपनी पॉलिसीज बनाना। अब देखें PIEF फॉर एग्जांपल, कितने लोग शिकायतें करते हैं इसके बारे में, क्यों नहीं प्राइवेटाइज करने दे रहे। मुख्तलिफ सियासी जमातें आती हैं, एक सियासी जमात करना शुरू करती है अगर हुकूमत उसकी है तो दूसरी सियासी जमातें उसकी मुखालफत शुरू कर देती हैं कि जी नहीं हम करने देंगे। पाकिस्तान स्टील है, कितना पैसा हर साल उनको देना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम उनको देते हैं उनका सिर्फ जो है वो डेफिसिट खत्म करने के लिए। ये कितनी खतरनाक बात है इस मुल्क के लिए कि जो लोग जो पैसा तालीम पे खर्च होना चाहिए, बच्चों की सेहत पे खर्च होना चाहिए, वो हम इधर डालते जा रहे हैं कि इसलिए सिर्फ कि हम उसे प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? पूरी दुनिया जब इस मॉडल पे चल रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, हमें क्या तकलीफ है इस बात की? कुछ तकलीफ नहीं है, हमारे मफादात हैं। हमें दूसरी हुकूमत को चलने नहीं देना, हमारी मुखालिफ जो है हमने उसकी टांग खींचनी है पहले साल में और दूसरे तीसरे साल तक उसको नीचे गिरा देना है। ये देख ले आप पिछले 10-15 साल में यही हुआ।
बहुत शुक्रिया। मेरा सर आपसे अगला सवाल है कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं रिटायर हो रहे हैं ऑन 16th, और 16 से पहले वो भी कहते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा कमाल का काम करके जाएंगे, फैसलों को महफूज किया हुआ है, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर जनाब जस्टिस उमर बंदियाल साहब के बारे में?
देखिए एक्सपेक्ट तो मैं उनसे यही करता हूं कि वो कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर करेंगे जिससे मुल्क में मौजूदा जो इंस्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहे, और हमारी अदलिया का इसमें बहुत नेगेटिव रोल रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। ये आज की बात नहीं, सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब की बात नहीं है, इनसे पहले भी जो चीफ जस्टिस आए हैं तारीख में पूरी में, और लेटेस्ट अगर आप बात करें तो इफ्तिखार चौधरी का दौर जो परवेज मुशरफ के बाद, मैं समझता हूँ कि परवेज मुशरफ के बाद के जो 15 साल है हमें उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद भी देखें जितने चीफ जस्टिस आए उन्होंने किसी सियासी हुकूमत को सही तरीके से काम नहीं करने दिया। बात यह है कि पावर सेंटर पाकिस्तान में 3 है कम अज कम, अब चौथा मीडिया भी अपना गंद डालता है। मीडिया एक्चुअली पावर सेंटर नहीं है, टूल है। पावर सेंटर एक सबसे बड़ा GHQ है, उसके बाद ये अदलिया है और फिर पार्लियामेंट है। अब ये तीनों की खींचतानी जारी रहती है, और जाहिर है उसमें आईन में तो सबका काम दर्ज किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अदलिया को ये तकलीफ है मुसलसल कि GHQ जो है वो भी हमारी तरह सरकारी मुलाजम है, हम भी सरकारी मुलाजम है। GHQ इतनी स्पेस ले गया है पावर प्ले में, पार्लियामेंट की स्पेस यूजर्प कर ली है, हुकूमत की एग्जेक्टिव की स्पेस ले गया है GHQ, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? तो वो हर वक्त कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं वहां बैठे उस सफेद बिल्डिंग में जो पाकिस्तान की शाहराह दस्तूर पे है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, नाम उसका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है लेकिन हर गैर आईनी काम उसी शाहराह पे होता है। वो हर वक्त उनका दिमाग नेगेटिव सोचता है मेजोरिटी ऑफ जजेस का, और उनको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है अपने ताकत का और अपने प्रोटोकॉल का, मतलब शर्म आती है। वो मुफ्त टिकट्स मांगते हैं क्रिकेट मैचेस के, वो धमकियां लगाते हैं अगर उन्हें मुफ्त क्रिकेट के मैचेस के टिकट ना मिले, वो उनके आगे पीछे कितनी पुलिस की गाड़ियां होनी चाहिए इस पे वो लड़ते रहते हैं पुलिस वालों से और इस्लामाबाद की इंतजामिया से, किस घर में जाना, उस घर में फर्नीचर क्या है, इस बात पे वो झगड़ा डाले रखते हैं। इनके अजीब ही मसाइल हैं, मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि अच्छे खासे खाते पीते लोग होते हैं ये, कोई ऐसे गरीब गुरबा तो नहीं उठ के आ जाते कि जिन्होंने पहली दफा पक्के घर देखे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, तो लालच ही नहीं खत्म हो रहा? इतना लालच है। अभी लोन उन्होंने इंटरेस्ट फ्री, इस हालात में जिसमें मुल्क गुजर रहा है उसमें उन्होंने अपने लिए इंटरेस्ट फ्री लोन अप्रूव करवा लिया 35 करोड़ का। मतलब कितनी अफसोसनाक बात है लाहौर हाईकोर्ट के जज, उनमें वो जज भी शामिल है जिसको शुगर जज कहा जाता है, और वो शुगर जज वो है जो शुगर मिलों के खिलाफ इस हुकूमत ने एक कार्रवाई शुरू की कि वो जो चीनी उस पर कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे शुगर की, उनके खिलाफ तो उन्होंने फॉरन स्टे ऑर्डर दे दिया और वो पिछले 8 महीने से 7 महीने से वो स्टे ऑर्डर चल रहा है। हुकूमत कुछ कर ही नहीं पाई। मैंने आपको बताया ना कि सबको यहां तकलीफ हो जाती है कि कोई सियासी हुकूमत काम ना कर पाए, कोई भी सियासी हुकूमत हो, किसी भी सियासी जमात की हो, मैं एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, उसकी टांगे खींचने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा मसला यह अदलिया को है कि हमें शायद कम स्पेस हमने छीनी है, हमने शायद कब्जा कम किया है, जितना कब्जा जीएचपी किया इसे हमें भी और ज्यादा कब्जा करना चाहिए। वो इस लालच में फिर इस मुल्क को तबाही के रास्ते पे खींचा था नहीं, जब इतने पावर सेंटर होंगे और इतनी उनकी उनका एहतसाब ही कोई नहीं, जुडिशरी का कोई एहतसाब नहीं है, जीएचपी का कोई एहतसाब नहीं है, जुडिशरी तो अपने फंड्स भी ऑडिट नहीं करने देती, इतना उन्होंने अपने आप को एक्सक्लूसिव रखा हुआ है। तो फिर जब एहतसाब कोई नहीं है, आपकी अपॉइंटमेंट आपकी यारी दोस्ती और नेटवर्किंग की बुनियाद पर होनी है, तो फिर क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी अदलिया की? और जो मर्जी करते रहे वो तो बादशाह है, एक बादशाह जीएचक्यू में चल रही है, एक बादशाह सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो पार्लियामेंट पीछे रह जाती है, जो जिस बादशाह जिसकी चलनी चाहिए अब हमारे आइन के मुताबिक, लेकिन वो बस ऐसे ही एक बेवकूफ से वजीर है।
हर पोजीशन ऐसी है कि वो सिर्फ मराहत लेना चाहते हैं, नोबडी वांट टू डिलीवर एनीथिंग टू।
मैंने अभी आपको बताया मराहत का, और वो एक स्कूल है 100 साल पुराना मरी में, अब उन्होंने कहा है वहां पे कब्जा करो और वहां पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, साथ में कोई रेस्ट हाउस बनाएंगे वहां पे, गर्मी की छुट्टी गुजारेंगे।
क्या जरूरत क्या है उसकी? क्या मगर एक वो बेहतरीन स्कूल है जो मरी का स्कूल है, दैट इज अ वेरी फाइन स्कूल, मतलब क्या वहां कौन से रेस्ट हाउस की जरूरत है? और जमीनें कम है,
बस वो पसंद आ गई ना, किसी को पसंद आ गई तो बस उस पर कर ले।
तो फौजियों को पसंद आ गया
तो वो भी कर लेंगे, वो कर लेते हैं। तो मैंने तो कहा था उस दिन एक अपने प्रोग्राम में कि अदलिया को चाहिए कोशिश करे कि वहां फौजियों की जमीनें किसी पे कब्जा करें ना, जिस तरह महकमा तालीम की जमीन पे कब्जा किया है और ऑर्डर किया पंजाब हुकूमत को, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कर दें, एक हफ्ते के अंदर अंदर।
हाउ इज पॉसिबल कि फौज ये मतलब मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इन आवर नोटिस, हाउ डेयर कि एक स्कूल जो बेहतरीन स्कूल है उसके बेहतरीन स्टूडेंट्स निकलते हैं,
उसकी हिस्टोरिक वैल्यू है, हिस्टोरिक वैल्यू, 4-5 जनरेशन वहां से तालीम हासिल कर चुकी हैं, जो वहीं रहते भी हैं, उधर ही रहते हैं बहुत सारे, तो उन्हें यादें होती हैं, एक विरसा होता है जिसे हेरिटेज कहते हैं, आप उसको कह रहे गिरा दो पूरी दुनिया।
फौज लेना चाह रही है उसको, ये अदलिया लेना चाह रही है,
अदलिया लेना चाह रही
है। मतलब अदलिया, व्हाट इज अदलिया, व्हाई, क्या पाकिस्तान का कोई इदारा इसको चैलेंज करे? ये लोगों की शादियां और बच्चों को तो जाके कोर्टों कचहरियों में चैलेंज करते हैं, इस बात को कि तालीम का मामला है, वैसे ही तालीम का फुकदान है, तो कैसे एक स्कूल को ले सकते हैं?
बस वो ऑर्डर कर दिया ना उन्होंने, अब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ उसको रोक सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका तो उसको अल्लाह ताला भी नहीं अब रोक सकता।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट जस्टिस फैज ईसा, डू यू थिंक कि उनके दिल में मुल्क की कितनी मोहब्बत और दर्द है, या अगर किसी पास्ट की चीज को देखें तो कोई नेगेटिविटी भी आती है दरमियान में?
देखें, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, आपकी यंग जनरेशन ने शायद वहां कैनेडा में ना सुना हो लेकिन आपने तो सुना होगा। तो हमें, मुझे तो बहुत उम्मीद है जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से, की बहुत तारीफें सुनी हुई हैं, मैं थोड़ा बहुत उनको जानता भी हूँ जाती तौर पे, तो मुझे तो उनसे पूरी उम्मीद है कि वो आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और जिस बात पे वो खुद ऑब्जेक्शन रेज करते रहे हैं, रिजर्वेशन और क्वेश्चन मार्क रेज करते रहे हैं पिछले दौर में, पिछले अदवार में, बल्कि वो खुद उसकी ऐसी जिंदा मिसाल बनेंगे और अपनी अदलिया को बेहतरीन कर देंगे और पेंडिंग केसेस को खत्म करेंगे और अदलिया की रिफॉर्म्स करेंगे, जो वो खुद भी कहते रहते हैं और हम सब भी कहते रहते हैं, लेकिन अगर ना किया तो बहुत ही अफसोस होगा और जाती तौर पर भी अफसोस होगा और एक अफसोसनाक सूरत हाल भी इस मुल्क में होगी। फिर हमारा एतबार मजीद खत्म हो जाएगा अदलिया पे, जो पहले खत्म हो गया, क्योंकि जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसके उस वक्त, उस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी उम्मीद वो यही थी कि ये लॉयर्स मूवमेंट कामयाब हो जाएगी तो आइंदा उसके बाद पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और कोई बंदा आइन और कानून को तोड़ नहीं सकेगा, और तोड़ेगा तो अदलिया जो है वो इतनी अच्छी और साफ सुथरी होगी और ट्रांसपेरेंट होगी और ईमानदार होगी कि हम उसके पास जाएंगे अपना मसला लेके और वो हक और सच का फैसला देगी। वो नहीं हुआ, जिससे लोगों के उम्मीदें और हौसले टूट गए। तो अब बहुत सालों बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई है, मैं उम्मीद की किरण कहूंगा इसको, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना टेस्ट ऑफ पुटिंग इज इन इट्स ईटिंग। तो अब काजी फाजी साहब आएंगे अगले हफ्ते से बैठेंगे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे और वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें और जैसा हम समझते हैं एक्सपेक्ट करते हैं उनसे वो वैसे करें।
अफसर आलम साहब आपको बहुत शुक्रिया। सर मैंने आपको वो लिंक भिजवा दिया और मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स ब्राइट स्टूडेंट्स हैं प्लीज गिव देम दिस लिंक और आप अपने तई इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह मेरा पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे, आमीन। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा।
जनाब अफसर आलम साहब से मैंने आपकी बात कराई।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज या फिर हो पे लोन, सोचो ना बस बिल्कुल भी, होने मिलाओ फोन
416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या कख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
स्मार्ट ऑप्टिकल्स,
नजर की आना क्या धूप का चश्मा, आई साइट चेकअप के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, खूबसूरत दिखने के लिए डिजाइनर ग्लासेस, सनग्लासेस, वाइड सिलेक्शन, कॉम्पिटेटिव प्राइसेस, डायरेक्ट बिलिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी,
25% डिस्काउंट विद दिस एड।
स्मार्ट ऑप्टिकल्स 9058212444, 821-2444,
2275 Britannia Road West, Unit 7, Mississauga.
Radio Sasoha, music, news and information, messages and chit-chat.
सुन रहे थे आप प्रोग्राम सासु आवाज़ और मेरा नाम आरफा मुजफ्फर साहब। ये चैनल आपका अपना है, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com है। बहुत सी जगहों पे जब आपको स्टैटिक मिलता है तो हमारा लोकल नंबर 6478724900, आप प्रोग्राम को बिल्कुल सुन सकते हैं अपने फोन पे, और जब आपका इम्पोर्टेंट फोन आएगा तो आप अपनी कॉल ले लीजिएगा। इस प्रोग्राम को हम यहीं इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। मैंने हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि अपनी दुआओं में उन तमाम को जरूर याद रखिए जो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं अच्छा करो, अच्छा बो, अच्छा काटो। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके लिए आसानियां पैदा करे और वो जो आज इस दुनिया में नहीं है उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी मंजिलों को आसान करे, कब्रों को जन्नत के बागों का हिस्सा बना दे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह तबारिक व तआला जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद दे और रिज़्क़ अता करे अपनी जनाब से। अल्लाह तबारिक व तआला मुझे आपको और हम तमाम को अपना मोहताज करे, कभी किसी इंसान का मोहताज ना करे। इन सब के साथ जाने वालों में मुजफ्फर अली को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, एक दुआ की तरफ बढ़ते हैं मेरी जानिब से, खुदा हाफिज।
मांगता हूँ अता, मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, दुआ मांगता हूँ अता कर तू शाने करीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे अता।
مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، ہوشاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، ہوشاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
पल भर के जाओ दिल कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे things gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे आए कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything gonna be okay। सोच जरा जाने जा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। अब तीन बार कभी कभी सार जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। आदती हंसते 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 नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। हे आदती हंसते 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 तू जरा नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। हे आदती हंसते 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 तू जरा नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा